ओम शांति। आज हम सफलता दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। सफलता का आधार या सफलता के लिए जो साधन बाबा ने सुनाए हैं, उनमें सबसे अहम साधन है बाबा की दी हुई श्रीमत। आज हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी इसी विषय के साथ हमारे बीच में हैं कि श्रीमत की लगाम से हम मन जीत स्थिति का अनुभव कैसे करें। इस सभा के बीच सबकी तरफ से हम आदरणीय राजू भाई का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। राजू भाई जी से हम सभी सुपरिचित हैं। आप बाबा के वो माध्यम हैं जो डायरेक्ट इतना शक्तिशाली तवे टू माउथ वाला भोजन हमेशा स्वीकार करते हैं और वही बाबा के ज्ञान रतन हम सबको बांटते हैं। आपकी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी अलग अलग क्षेत्रों में देखने आती है, चाहे वो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है, चाहे आजकल रूरल डेवलपमेंट विंग कोजप से एक हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने संभाला है। बहुत तेजी से विंग ने प्रोग्रेस किया है। यहाँ की इतनी जिम्मेवारियों के बावजूद भी रूरल डेवलपमेंट विंग के जितने भी प्रोग्राम है और जिस तरह से वो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपका संपूर्ण गाइडेंस और प्रेजेंस दोनों ही सुचारू देखने में आई है। तो आज हम सबके सामने एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जिन्होंने यज्ञ में भी बड़ों से बड़ों के समीप अपनी विशेषताओं और अपनी वफादारी से अपने को एस्टैब्लिश किया है और सेवाओं में भी आपने इतना ही अपने व्यक्तित्व को निखार दिया है। मैं आदरणीय राजू भाई से निवेदन करती हूँ कि आज का हमारा जो विषय है श्रीमत की लगाम और इससे मनजीत स्थिति, इस विषय की गहराई में हमें ले जाएं आदरणीय राजू भाई।
ओम शांति। मधुबन की इस पावन भूमि में आप सभी मनजीत स्थिति का तो अनुभव कर ही रहे हैं। मनजीत है ना, इस समय यहाँ भी मन भटक रहा है। मन तो आत्मा का इतना सुंदर वाहन है जिससे आप जिधर चाहो उधर की यात्रा कर सकते हो। लगाम हाथ में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ बाबा की श्रीमत अनुसार सभी ने अपने अपने मन को अपने काबू में रखा ही होगा। आज भी बाबा कह रहे थे बच्चे अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति का भी अनुभव मन के द्वारा ही हम कर सकते हैं और कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी मन ही कराता है। और उसकी विधि बाबा ने आज बड़ी सरल शब्दों में सुनाई, सब संकल्पों को समेट करके एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो मनजीत स्थिति क्या हुई? एक संकल्प में स्थित होना। जब चाहें जहां चाहें वहां पर संकल्प शक्ति से पहुंच जाएं और जितना समय चाहें वहां रह सकें। थोड़ी मेहनत है इसमें, कहना सहज है क्योंकि बहुत सारी बातों में मन उलझा रहता है। सेकंड में मन को उसकी गति को स्टॉप करके जिधर चाहे उधर उसको मोड़ दें, उसके लिए बहुत अच्छी लगाम चाहिए। तो मैं समझता हूँ 3 दिन की इस तपस्या भट्टी में आप सबने अनुभव जरूर किया होगा कि जब चाहे तब अव्यक्त वतन में और जब चाहे तब मूल वतन में पहुंच जाए। किया है सभी ने कि नहीं, कि अभी भी यहाँ भी भटकते हैं। कोई कारोबार याद आई क्या, बिजनेस याद आया? डॉक्टर साहब कोई नौकरी याद आई? क्या हुआ? बाबा तो हम बच्चों को साकार में कहते थे, बच्चे मन को थोड़ी जीता जाता है, माया जीते जगत जीत। साकार मुरलियों में कभी आपने मन जीत शब्द नहीं सुना है। अव्यक्त बाबा ने मन जीत स्थिति पर ध्यान खिंचवाया। साकार बाबा ने कहा कि मन के अंदर जो माया प्रवेश हो गई है, विकार प्रवेश हो गए, उसको जीतना है। और उस जीतने के स्वरूप को इस बार 2 दिन पहले आपने सुना होगा कितने वंडरफुल रीति से बाबा ने उसको भी चेंज कर दिया। जीतना माना उसको मार देना नहीं, उसको सहयोगी बना लेना, उसके रूप को परिवर्तन कर देना। तो विकारों के रूप को परिवर्तन करने के लिए बड़ी सुंदर विधि बाबा ने उस दिन सुनाई, याद है किसी को? 5 विकारों को कैसे परिवर्तन करना है, सहयोगी बना लेना है। इस बात को अंडरलाइन किया होगा क्योंकि क्लास कराने वालों को तो सोचना पड़ता है, खास वरदान में था। और कोई क्वेश्चन इस पर करते हैं तो उस पर और मनन चिंतन चल जाता है। तो किसी ने कहा कि और सब तो समझ में आ गया, लेकिन बाबा ने कहा काम विकार को शुभ कामना में चेंज कर दो, ये समझ में नहीं आया। काम विकार उसको शुभ कामना में परिवर्तन कर दिया जाए, क्रोध को तो रूहानी रोग में, रूहानियत की खुमारी में परिवर्तन किया जा सकता है। भाई जोश नहीं है लेकिन इसके ऊपर कितना रुहाव है चेहरे पर। लोभ को भी अनासक्त वृत्ति यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं है, उसको परिवर्तन किया जा सकता है। मोह को एक शुद्ध प्यार में, शुद्ध स्नेह में परिवर्तन किया जा सकता है। अहंकार को स्वाभिमान में, अपने स्वशासक की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन शुभ कामना के रूप में काम विकार को परिवर्तन कर दें। मेरे पास फोन आए, इस पर प्रश्न आए, इसलिए उत्तर दे रहा हूं मैं। क्योंकि काम विकार वास्तव में इसका जो सूक्ष्म रूप है वो कामना है, इच्छाएं हैं। देह अभिमान के वश आत्मा ऐसी ऐसी इच्छाएं कर लेती है जो उसके अधीन हो जाती है। केवल वो विकार काम का सेक्स के रूप में नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म कामनाएं चाहिए। ये अच्छा लगता है, किसी आत्मा के ऊपर प्रभावित हो जाना, किसी के गुणों पर, किसी की विशेषता के पीछे लग जाना, यही अच्छा है। तो वो जो कामनाएं हैं सूक्ष्म, वो देहमान का रूप है, वो काम विकार का अंश है। और जब हमारी वो कामनाएं दैहिक परिवर्तन हो जाती हैं, शुद्ध कामनाएं हो जाती हैं, आत्माओं की विशेषता देखना, लेकिन ये विशेषताएं प्रभु देन हैं, किसी व्यक्ति के विशेष विशेषताओं के ऊपर प्रभावित न होना, उसके प्रति भी अपनी अच्छी कामनाएं रखना, ये बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छी आगे बढ़े, वो शुभ कामनाएं हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया कि उसे शुभ कामना के रूप में परिवर्तित करके उसको सहयोगी बना लो। ऐसे ही मन जीत स्थिति, क्योंकि मन जो हमारा सेवक है, साधक, साधन है, इसको भक्ति में कहते हैं अंतर मन वाहन। हमारा जो अंदर का मन है वो ही वाहन बन जाता है। और बाबा इसके द्वारा हम सबको इस समय विशेष सेवा की इस प्रेरणाएं देते हैं, इशारे देते हैं कि बच्चे अभी समय अनुसार वाचा सेवा कर्मणा सेवा का चांस खत्म हो रहा है, अब इसका अभ्यास करो मन से सेवा करने का, मनसा सेवा का, और इस मन को जहाँ चाहो जब चाहो वहाँ पहुँचा सको ले जा सको, उसके लिए मन आपका सेवक तभी बनेगा जब अच्छे अच्छे चिंतन अच्छी विचारधाराएं होगी। उसको सिर्फ मारना नहीं है, सिर्फ उसकी लगाम को खींचे नहीं रखना है, लेकिन उसको अच्छे अच्छे चिंतन अच्छे अच्छे संकल्प अच्छा संग देने की जरूरत है। तो मन जीत स्थिति के लिए पहली श्रीमत ये बाबा की है कि बच्चे हर दृश्य ड्रामा का कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। और जब हर दृश्य कल्याणकारी है तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसमें भी हो सकता है कुछ कल्याण समाया हुआ हो, क्योंकि जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो बहुत सारे प्रश्नों में मन उलझ जाता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों किया गया मेरे साथ ही ऐसा कैसे होता है, मेरा ही हिसाब किताब है, बहुत सारी बातें मन को उलझाने वाली आती हैं। लेकिन अगर हमने इस चिंतन को मन को अच्छा चिंतन दिया है कि ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ रहस्य हैं, कुछ न कुछ कल्याण है, कोई हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमारा ये पेपर है, हम आगे बढ़ेंगे इससे, हमने तो ये अनुभव किया है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी के आगे कोई पेपर ही ना आए, अनुभव बढ़ेगा कैसे, अनुभव की अथॉरिटी बाबा बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई कभी कभी क्या होता है, मेरे कोई एक्टिविटी पर ईर्ष्या के वश, अनुमान के वश, बहम के वश, कोई न कोई शक और दुविधा के संकल्प वातावरण में फैला देते हैं, लोगों को सहन नहीं होता किसी किसी का आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ना सहन न होने के कारण कुछ न कुछ उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उसको आगे न बढ़े उसको गिराने के लिए बहुत सारी प्लानिंग अंदर अंदर कोई कोई करती हैं आत्माएं, और उसके कारण अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, तो हमारे जो मन के संकल्प हैं वो उलझन के कारण परेशान करते हैं और वो लगाम छूट जाती है। जो बाबा कहता है श्रीमत की लगाम रखो मन के ऊपर, वाणी के ऊपर, कर्म के ऊपर, वो छूट जाती है, कुछ न कुछ हमारे मुख से भी निकल जाता है, वो हमारे प्रति कहता तो हम उसके लिए कह देते हैं। बाबा कहता बच्चे सबके प्रति शुभ भावनाएं रखो, शुभकामना रखो, जो हो रहा है ठीक है अच्छा है, आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, सबके पास है, वर्णन भी हम सब करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसी बातें आती हैं तो उसको हम कैसे फेस करते हैं, कितनी जल्दी उसको हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सेकंड में स्टॉप होता है या चलते रहते संकल्प, नींद फिर जाती है, घंटों घंटों उसके पीछे समय चला जाता है, क्या होता है, हर एक अपने आप से पूछना। क्योंकि ये पेपर तो मैं समझता हूँ इस ब्राह्मण जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मेरे आगे कोई भी प्रकार का पेपर ही नहीं आया है। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर्स हर एक ने पार किए हैं, कोई ने कितना समय दिया उसको, कोई ने कितना, कोई एक दो दिन लगा देते हैं, कोई कहते हैं चलो ठीक है पूरा हो जाएगा। तो कोई भी दृश्य कोई भी बात कोई भी घटना हमारे सामने आए उसमें क्यों क्या कैसे अनेक प्रश्नों में मन न उलझे, तब कहेंगे मन जीत स्थिति है। अगर उलझन है तो मन जीत स्थिति नहीं, वो तो फिर आपको परेशान करेगा। आप चाहोगे हम योग करें, कहेंगे योग ही नहीं लगता क्या करें, जैसे आज बाबा के किसी बच्चे ने कहा बाबा योग ही नहीं लगता, कहा बेबी है, बेबी का भी बेबी, अरे योग नहीं लगता, बाप को याद करना कोई मेहनत का काम है। तो बाबा तो बहुत रमणीकता से अपने बच्चों को पार कराना चाहता है, लेकिन बच्चे मूंझ जाते कहाँ योग लगता है, बैठ जाते एक घंटा दो घंटा, कहीं इधर घूमता कहीं उधर घूमता, थोड़ी देर कमेंट्री करते हैं अंदर अंदर और फिर भटक जाता है। अगर ध्यान दें और इसको अच्छे चिंतन की आदत डाल लें कि जो होगा अच्छा होगा, हर बात में कल्याण है, तो कल्याण की बिंदी अगर लगाने का अभ्यास हम करते हैं तो ये फुल स्टॉप लगता है, मन जीत स्थिति का अनुभव होता है। और कभी भी एक बात का ध्यान ब्राह्मणों को अवश्य रखना पड़ता है। मैंने कई बार ये अनुभव सुनाया है कि जब मैं पहली बार मधुबन में यहाँ रहने आया तो दीदी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, प्रश्न नहीं किया, मुझे एक राय दी, कान में राय दी, बड़े प्यार से बुला के कहती है, तुम संग की संभाल रखना। मुझे बहुत इस बात पर प्रश्न उठा था और ये बात मधुबन के लिए और यहाँ के लिए कही जाए तो नेचुरल है कि हम जिस संग से आए हैं, खराब संग को छोड़ के आए, स्कूल के विद्यार्थियों का संग छोड़ के आए, विकारी लोगों का संग छोड़ के आए, और मधुबन में भी अगर हमको यही प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ भी संघ की संभाल करना, तो क्वेश्चन तो उठेगा ना। तो दीदी ने एक बड़े सरल शब्दों में मुझे कह दिया संघ की संभाल रखना, लेकिन जब मेरे प्रश्न देखे, इसको हलचल हुई अंदर कि यहाँ किसके संघ की संभाल करनी है, तो दीदी ने कहा कि यहाँ पर भी कई सफेद ड्रेस में हैं लेकिन सेवा नौकरी के रीति से सेवा कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, जिनका योग पर ध्यान नहीं है, ऐसे के संग में अगर बैठेंगे उठेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। इसलिए कोई अगर यज्ञ की, बाबा की, ज्ञान की, मुरलियों की बहुत क्वेश्चन करता है, बहुत करेक्शन करता है, हर प्रकार से उसमें नुक्स निकालने का प्रयास करता है, हे ब्राह्मण दिखाता है मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, लेकिन हर एक्टिविटी में, हर बात में अगर प्रश्न ही प्रश्न उसके उठते रहते हैं और दूसरों को सुना सुना करके उसको उनकी भावनाओं को कम कर देता है। आप सभी एक बात चेक करना, अंदर सी बात मैं कहता हूँ, मैं चेक करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जब आप पहले पहले बाबा के बच्चे बने, जो आपके अंदर की भावनाएं थी ब्रह्मा भोजन की, भोग की, मुरली की, दीदियों के प्रति, बड़ों के प्रति, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, वो भावनाएं आपकी वही हैं कि बढ़ी हैं या कम हुई हैं? कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में भावना के कारण बाबा भगवान मिल गया, इतनी ऊंची पढ़ाई मिल गई, इतनी पवित्र बहनें मिल गई, इतना अच्छा संघ मिल गया, इतना अच्छा संगठन मिल गया, और बहनों के साथ अच्छे परिवार के संग में आकर के हम सब कुछ समर्पित करते, तन मन धन समय जो कुछ होता है सेवाओं में लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव दिखाई देने लगते हैं संगठन में, क्या होता है, चलते चलते वो भावनाएं कम होने लगती हैं। और भावनाएं अगर परिवर्तित हो जाती हैं तो क्या होता है, जो उमंग है, उत्साह है, जो एक लगता है कि सचमुच कैसा परिवार, कितना अच्छा बाबा का घर, कितना अच्छा परिवार, कितनी ऊंची पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पालना, भावनाएं कम होते ही दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि हम सब केवल विवेक को यूज न करें, जहां विवेक बुद्धि को यूज किया जाता है वहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जरा पुराने हो जाते हैं, 8-10 साल 15 साल जब ज्ञान में बीत जाते हैं, थोड़ा और अंदर आते हैं तो नेचुरल है, कुछ तो हरेक के अंदर कमियां हैं ही, कोई संपन्न संपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है, रेस कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन वो कमियों को देखने की अगर आदत बन गई, बाबा कहता है एक शक्ति सबके अंदर है, बहुत अच्छी है, वो है ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन गुण ग्रहण के साथ साथ अगर अवगुण भी ग्रहण होने लगे तो फिर मन कहाँ जाएगा। अगर उन पर ध्यान जाने लगे बार बार कि इसके अंदर देखो ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, योग तो बड़ा अच्छा कराती है, कोर्स भी बहुत अच्छा देते, लेकिन ये है तो जितनी उसकी विशेषताएं हैं वो विशेषताओं की बजाय उसकी एक छोटी सी कमी पर हमारा ध्यान चला जाता। हमने यज्ञ को बढ़ते हुए देखा, जब से हम बाबा के घर में आए हमारी दादियों ने और बाबा ने, इतने सब बच्चे वैरायटी हैं, संस्कार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, उनके गुण अवगुण अलग अलग हैं, सब हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने केवल हमारी विशेषताओं पर ध्यान दिया। और क्या इसकी आत्मा की विशेषताएं हैं उसको देख करके कैसे इसको आगे बढ़ाना है। एक बार बाबा की मुरली चली थी, अगर किसी बच्चे में 36 में से 35 अवगुण हो और एक ही गुण हो तो भी मैं उस बच्चे को एक गुण से आगे बढ़ा करके सर्वगुण संपन्न बना देता हूं। ये है रहम दिल बाबा हमारा। हम सब भी इस बात को अंडरलाइन करें कि जो बाबा के बच्चे हैं कुछ न कुछ विशेषता, कुछ न कुछ गुण लेकर के आए हैं, वो समर्पित हुए हैं या ज्ञान में चले हैं। हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हर एक की अपनी क्वालिटी है, एक की दूसरे से भेंट नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। लेकिन उस विशेषता को देखने का मेरा चश्मा बहुत पावरफुल अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं विशेषता को ही देखता हूँ और विशेषता को देख करके उसको अपनी सेवा में सहयोगी बना लूँ तो मैं समझता हूँ मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, वो भी आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर विशेषता की बजाय कमियों को देखा और वर्णन कर दिया तो ये मन उन्हीं कमियों को देखने में उलझता रहेगा, कभी भी योग नहीं लगेगा, कभी भी एक सच्चे सुख का, आनंद का, प्यार का अनुभव नहीं होगा। योग का आधार है बहुत दिल का प्यार, दिल का स्नेह। केवल विवेक चलाते रहो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, मैं परमधाम निवासी हूँ, चिंतन कर सकते हो, चिंतन अलग चीज है। लेकिन एक मग्न स्थिति, बहुत लौलीन स्थिति का अनुभव हो, बाबा के प्यार में एकदम आत्मा बैठे और खो जाए, मग्न हो जाए, उसके लिए अधिक बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत भोली भोली माताओं को देखता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि मैं आत्मा एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, कभी चिंतन ये नहीं किया होगा। भले ज्ञान दिया जाए, कितना भी बाबा कहते हैं इनको तोतों को पढ़ाओ भी, लेकिन वैसे के वैसे पढ़ते हैं, फिर भी योग में इतने अच्छे अनुभव करते हैं, मुझे बाबा मिला, मैंने दृष्टि ली, मैंने शक्ति ली, बाबा मुझे मदद करता है। एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ। मैं एक गांव में गया क्लास कराने के लिए, बड़ी रमणीक बात है, जनवरी महीना था, बहुत ठंडी पड़ रही थी, तो उस गांव के अंदर सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला थी लेकिन 70 लोग एक मंदिर के अंदर अमृत वेले का योग करने आते थे। ठंडी, जहाँ छत थी केवल, दीवालें खुली थी, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, खुले मंदिर में दरी बिछा करके नीचे बैठ करके 70 लोग अमृत वेला करते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा चलो देखूं गांव में इनको क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है। तो मैं उस क्लास में गया और जाकर के उनसे, माताएं भी काफी थी, कुछ भाई थे, मैंने पूछा कि आप लोग इतनी ठंडी में एक मंदिर के अंदर, हम लोग तो हीटर जला के बैठते हैं माउंट आबू में, सब जगह इतनी ठंडी है, कैसे योग करते हो, क्या मिलता है, क्या अनुभव बाबा आपको कराता है। तो पहले तो एक बूढ़ा भाई, बुजुर्ग था, मैं समझता हूँ 70-75 साल का था, वो कहता, मैं भाई साहब सुनाओ, गुजराती लोग थे, हमने कहा सुनाओ। तो उसने बड़े प्यार से सुनाना शुरू किया कि मैं जब बाबा के आगे यहाँ बैठता हूँ तो ये बाबा का जो फोटो रखा है ना, ये बाबा का फोटो नहीं, ये चैतन्य आता मेरे सामने, मेरे से बातें करता है, मुझे दृष्टि देता है, उसकी मुछें हिलती हैं, मुझसे बात करता है, वो पैर बदलता है, ऐसे भावना से बहुत प्यार से सुना है ना। फिर क्या करता है, कहता मेरे सिर पर हाथ रखता है, बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, ऐसे प्यार से अपने अनुभव सुनाने लगा कि मुझे बहुत बाबा प्यार करता है सवेरे सवेरे। मैंने कहा अच्छा और क्या है, दूसरे सुनाओ कोई। तो एक माता खड़ी हुई, माता कहती भाई जी मैं सुनाऊं, उन्होंने कहा हाँ जरूर मैं सुनने आया हूँ। कहती है कि जब ये मधुबन से डायरेक्शन आया कि अमृत वेला सबको करना है, तो मेरे पति ने मेरी ड्यूटी लगाई खेती पर। मेरे खेत में शाम को 8 बजे से सुबह 4-5 बजे तक मुझे ड्यूटी देनी पड़ती, क्योंकि वहां पर जानवर घूमते हैं, पशु आ जाते हैं, वो हमारी खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम पहरा देते हैं खेती पर। तो जब मधुबन से डायरेक्शन आया कि योग करना अमृत वेले, तो मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी खेत पर, मैं कैसे योग करूंगी। तो मैं बाबा के कमरे में गई और बहुत बाबा से झगड़ा किया। माताएं झगड़ा करती हैं कभी बाबा से? करते हो कि नहीं? कि प्यार ही करती हो, झगड़ा भी किया करो कभी। बहुत प्यार से मैंने उससे बोला, बाबा को बोला फोटो के आगे बैठ करके कि बाबा आप मधुबन से बैठे बैठे डायरेक्शन देते रहते हो, कैसे मैं योग करूंगी, मुझे पहरा देना पड़ता है। तो कहते मैं जब झगड़ करके खेत पर गई तो देखा सामने से शिव बाबा की लाइट ऐसे दिखाई दी पहले ऊपर से, और लाइट के बाद ब्रह्मा बाबा ऐसे खड़े सामने ऊपर से दिखाई दे आ रहे हैं। कहते बच्ची तेरे को योग करना है ना, तुम क्यों पहरा देने आई, जा सो जा, जाके सवेरे योग करना, पहरा मैं दूंगा अभी। कहती जब मैंने बाबा को ऐसे देखा और आवाज सुनी कि बाबा कहता बच्ची मैं पहरा दूंगा, तुम सो जाओ और योग करना, मैं चुपचाप चली आई खेत से, और तब से लेकर के मैं रोज योग करती हूँ, बाबा मेरे खेत पर पहरा देता है, कोई नुकसान नहीं हुआ, जानवर वही, सब वही, खेती वही। कहती कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ, बाबा मेरे खेत पर है। तो ऐसे अनुभव बाबा कराता है भोले बच्चों को, सच्चे बच्चों को, दिल वाले बच्चों को। उनका मन भटकता होगा क्या? मन भटकता उनका जो बहुत बुद्धि चलाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे होगा? अरे ये अंधश्रद्धा नहीं है, बहुत भावना है, भगवान भावना का भूखा है। भावना से बाबा को बहुत प्यार करो, दिल को दिल से याद करो, और दिल से बाबा कहो, बाबा कहता मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मन को लगाम क्या है, कौन से लगाम है, यही श्रीमत है कि बच्चे ज्यादा क्यों क्या कैसे अहम बहम इधर उधर के संकल्पों में अपने मन को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो उलझे रहोगे यहीं पर संसार में, योग नहीं लगेगा। श्रीमत की लगाम यही है कि जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, कायदे हैं, हर एक को अमृत वेले से रात तक के लिए हर चीज के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अब उसको रिवाइज क्या करूंगा मैं, मुरली माना श्रीमत, मुरली ही श्रीमत है ना, और कुछ है क्या? कि बहन जी की मत ही मत है या श्रीमती की मत मत है, ध्यान देना, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ राय। और वो श्रेष्ठ राय बाबा ने अमृत वेले कैसे उठ करके बाबा को याद करो, स्नान पानी में क्या ध्यान रखो, फिर मुरली क्लास के समय कौन सी स्मृतियां रखो, फिर कर्मयोगी जीवन के समय क्या ख्याल करके योग कर्म करो, हर बात के लिए श्रीमत दी है। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम सभी जो स्वयं भगवान ने सहज रूप से अमृत वेले से रात्रि तक के लिए हमें श्रीमत सुनाई है। प्रवृत्ति में है, समर्पित हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, बच्चे हैं, कोई भी प्रोफेशन के हैं, हरेक के लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है। और कुछ नहीं, अगर मान लो आपको रहता है याद करो, तो कहता है जो कुछ कर रहे हो सिर्फ करने में मुझे अपना साथी बना लो, आवाहन करो मेरा, दिल से कहो बाबा आओ मदद करो, आप मेरे साथ हो, बुद्धि से मेरे पास पहुंचो और मुझे अपने पास बुला लो। कम से कम 1 सेकंड 1 मिनट कोई भी कार्य शुरू करने के पहले बाबा को अपने सामने, अपनी नजरों के सामने हाजिर करो, बाबा आ करके मदद करो, आप ही हमारे हो, मन से इतना तो कह सकते हो बाबा को। तो ये श्रीमत पहली है कि हर कार्य के पहले, बीच बीच में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई को बहुत बुद्धि का भी काम है, मान लो बहुत बुद्धि इंगेज हो जाती है, नहीं बीच में याद आती, तो भी 10 मिनट में कम से कम 2 मिनट बाबा को दो। दस मिनट का कार्य है उसको आठ मिनट में कर सकते हो अगर दो मिनट बाबा को दोगे तो। इसलिए बहुत प्यार से बाबा का आवाहन करना, बाबा को अपने सामने हाजिर नाजिर अनुभव करना और मन से उससे बातें करना, ताकि वो कार्य में आपका साथी बन जाए। संगम युग ही है जो हम सब बाबा के बच्चे बाबा को यूज कर सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, यूज कर सकते हैं। कहते यूज करो बच्चे, यूज ही नहीं करते हैं। मैं देखता रहता हूं बच्चे इसको याद करेंगे उसको याद करेंगे, कोई चीज की जरूरत पड़ी पहले कौन याद आता है? कोई संबंध याद आता है, कोई अच्छी पोस्ट पर वो याद आता है, वो होता तो मदद करता। बाबा मुस्कुराता है, देखता रहता है, अच्छा वो आएगा मदद कर देगा, मैं क्या करूं? अगर पहले संकल्प में आप बाबा को याद करो, बाबा जिससे कराना होगा अपने आप कराएगा, भले निराकार है लेकिन याद उसको किया है तो उसको तो बाबा कहता मैं तो हजार भुजाओं वाला हूं, मैं हजार भुजाओं वाला आपके साथ रहता हूं और तुम भी दो भुजा वाले को याद करते हो तो फिर वो मदद कर लेगा, मैं भी साक्षी हो जाता हूं। तो संगम युग पर बाबा को साक्षी नहीं बनाना, साथी बनाओ और साथी बना करके एकदम अनुभव करो कि बाबा मेरे साथ हाजिरा हजूर है। और हाजिरा हजूर अनुभव करके जो कार्य करेंगे वो अच्छा ही होगा। क्यों हम कोई के प्रति अनुमान लगाएं, बहम करें, ईर्ष्या करें, नफरत करें, बदला लेने की भावना रखें, जब वो साथी हमारा सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, तो आत्माएं मुझे क्या करेंगी, क्या बिगाड़ेंगी। शक और अनुमान की बीमारी बहुत खतरनाक है जो मन को कभी भी शांत रहने नहीं देती। ब्राह्मण जीवन में अगर किसी को बहम बैठ गया ना, तो बाबा कई बार कहते हैं दो बीमारियां इस समय जैसे बहुत फास्ट फैल रही है ना, आपने देखा होगा दो बीमारियों की कलयुग के अंत में, प्रदूषण के कारण, खान पान की अशुद्धता के कारण, टेंशन के कारण बहुत फास्ट फैल रही है। एक कैंसर छोटे छोटे बच्चों को, कहीं भी किसी को भी कब हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता, कौन सी गांठ बन गई कैंसर रूप हो गया है। तो खान पान की अशुद्धि, वातावरण की अशुद्धि, दूसरा हार्ट की बीमारी, पूछो डॉक्टर साहब से, छोटे छोटे बच्चों की नलियां बंद हो जाती, अटैक आ जाते, कुछ न कुछ हो जाता। तो दुनिया के अंदर ये दो बीमारियां और ब्राह्मण परिवार में आध्यात्मिक भाषा में हम इसको कहें तो अगर दिल निराश है, उदास है, ब्लॉकेज हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, उमंग उत्साह अगर इस ब्राह्मण जीवन में नहीं है, चलते चलते उसका कोई भी प्रकार से कोई भी कारण बने, आपकी कोई ग्लानि ही कर दे, आपके ऊपर कोई कलंक ही लगा दे, कोई के साथ किसी के नाम रूप में आपको फंसा दे, फिर भी आपका उमंग उत्साह कम तो नहीं होता। अगर आप सच्चे हैं तो क्यों परवाह करते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्या कोई कर सकता है? केवल आप अपने आप में बहुत दृढ़ रहें, निश्चय बुद्धि बन करके रहें, बाबा मेरा साथी है, जीवन उसको दी है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बहम अनुमान लगाएगा भी, इधर से उधर करेगा भी, तो सत्यता कब तक धूल में छिपी रह सकती है? जो सच्चा है वो अपने आप एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैं क्यों प्रत्यक्ष जिद्द और सिद्ध क्यों करूं? अगर कोई उसमें जिद्द और सिद्ध करता है तो उसके बहुत सारे संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं, बहुत सारा मन, समय, संकल्प, श्वास। ये ब्राह्मण जीवन के तीन बड़े खजाने हैं, एक संकल्प, दूसरा समय और तीसरा ये श्वास। बाबा कहता श्वासों श्वास मुझे याद करो, इस श्वास में एक भी दूसरा कोई संकल्प ना है, बस बाबा 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 अनाद श्वास चलती रहे। ये तीनों खजाने, अगर एक संस्कार कोई भी है, कोई एक नेगेटिव संस्कार है, श्रीमत का एक जगह पर उल्लंघन हो रहा है, कितनी श्वासें जा रही हैं, कितना समय जा रहा है, कितने संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, सब कुछ पेपर आते हैं पार हो जाएंगे, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, नियत साफ है, मुराद हासिल है। नियत अगर हमारी अंदर की साफ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब मुरादें हासिल हो जाने हैं। इसलिए बहुत दिल से बाबा को साथी बना करके, कोई भी ऐसी बीमारी हो छोटी मोटी, शक की बीमारी बताऊं माताओं में, कहना तो नहीं चाहिए, भाइयों में भी होती है, दोनों में ही होती है, लेकिन एक माता की कहानी सुनाता हूं। प्रैक्टिकल की बात, एक सेंटर पर एक युगल बहुत बढ़िया ज्ञान में चलता, बहुत अच्छा था। थोड़े समय पहले माता ने बहुत प्यार से गीता पाठशाला घर में खोली, बहुत उमंग, बड़ा उत्साह था। और भाई उसका बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पर था, बहुत अच्छी पोजीशन, दोनों ज्ञान में आए। लेकिन भाई को नौकरी के कारण समय नहीं मिलता था सेवा पर, उसने अपनी पत्नी को छुट्टी दी कि तुम जितनी चाहिए खूब सेवा करो, प्यार से करो, मेरी छुट्टी है, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा बंधन है, मेरे को बहुत ड्यूटी करनी पड़ती है। तो माता जी को इतना उमंग, इतना उत्साह, जो उन्होंने बड़ी अच्छी एक गीता पाठशाला खोली थी, 15-20 माताएं भाई क्लास करते थे घर में ही, मुझे ले गई क्लास के बीच में। बहुत मुझे खुशी हुई कि प्रवृत्ति तो एक आदर्श प्रवृत्ति है, तो घर आश्रम बना हुआ है। लेकिन एक साल के बाद फिर मैं गया, माता जी के चेहरे पर वो रौनक नहीं, वो खुशी ही नहीं। देख करके मुझे लगा क्या हो गया, बीमार हो गई, कोई तकलीफ है, अंदर की कोई शारीरिक बीमारी है, क्या है, चेहरा क्यों काला हो गया, ऐसा मुरझा क्यों गई। तो मैंने बहुत खोदने की, पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं जवाब, बस आंखें गीली, बोले ही नहीं, कह नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे शक पड़ा इसको कोई बहम हो गया है, ये अनुमान की बीमारी, इसकी दवाई तो कोई के पास नहीं। फिर मैंने उसके युगल को पूछा, भाई मिला मेरे को, उसके ऑफिस में मैं गया, कहता भाई जी मैं कुछ समय पहले रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद मैंने सोचा बहन तुम्हारी बहुत फास्ट चली गई, युगल तो नंबर वन आगे आ गई, तो मैं भी कुछ करूं। तो मेरे पास गाड़ी थी, तो बहनों को मैंने ऑफर किया कि बहन जी जब आप कहोगी मैं हाजिर हूं। मैं सेवा देने लगा, दिन रात जब बहने फोन करें मैं पहुंच जाऊं। धीरे धीरे क्या हुआ, नेचुरल है, जब बहने बुलाएंगी, ले जाएंगी, कहीं सेवा पर ले जाएंगी तो खिलाएंगी, बिठाएंगी, बात करेंगी। लेकिन वो माता जी को थोड़ा थोड़ा शक पड़ने लगा कि भाई तो सारा दिन बहनों के बीच में क्या करता होगा पता नहीं, इतना क्यों बहने बुलाने लगी, पहले तो पूछती नहीं थी, अभी रोज उसको फोन कर देती, रोज वो तैयार हो जाता गाड़ी लेकर के। अंदर अंदर वो घुन खाने लगा, समझ गए आप, अधिक नहीं बोलता हूं मैं, समझ जाओ। और इतनी जबरदस्त उसको बीमारी लग गई, जो भाई को पता चला, नेचुरल है घर में तो पता चलता ही है, झगड़ा होने लगा, टकराव शुरू हो गए। उसने कहा छोड़ मुझे एक ब्रह्मा कुमारी में जाना ही नहीं, तुम लोग इतना शक करते हो, इतने अच्छे हम समझते उड़ गए हो, वो हमको भी रेस करने दो, हम भी आगे बढ़े। कहता मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हमने कहा कुछ कर लूंगा, बिजी रहूंगा, छोड़ो, क्यों अनुमान घर में लगे। लेकिन एक बार जब बीमारी घुस जाती है ना, अनुमान की, बहम की, और अगर आपके लौकिक प्रवृत्ति में बीमारी घुस गई, पति पत्नी के संबंधों में भी घुस गई, शांति नहीं, मन शांत नहीं रह सकता, कभी भी मन जीत स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। लगा लो योग, मेहनत कर लो, खूब मुरलियां सुनो, खूब भट्टियां करो, लेकिन बहम को नहीं खत्म किया तो कभी भी बीमारी जाए योग नहीं लगेगा, मन जीत नहीं बनेगा। तो ये ऐसी सूक्ष्म बीमारियां हैं, अगर अंदर से अहम के रूप में, बहम के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, बदला लेने के रूप में, जिद्द के रूप में, ये सब बहुत सूक्ष्म कारण है। और इसके लिए सबके लिए श्रीमत है, बाबा ने हर एक बात के लिए श्रीमत दी है, और इतना ऊंचा आदर्श ज्ञान हम सबके पास है कि बच्चे हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक इस सृष्टि नाटक के अंदर बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, और एक का पार्ट, एक के संस्कार, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मेट करेगा। इसलिए क्यों मैं अपनी बुद्धि को चलाऊं और इसके पीछे अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब करके अपने आप को, उमंग उत्साह को खत्म कर दूं। जहां उमंग उत्साह खत्म हुआ, निराशा आई, उदासी आई, दिल शिकस्त हुए, वहीं पर ये दिल की धड़कनें, ये हार्ट की बीमारी शुरू हो जाएगी। कितना भी ऑपरेशन कराओ, एक के बाद एक नेचुरल ब्लड का सर्कुलेशन शांत हो जाएगा। इसलिए ये अटैक नहीं आने देना, ध्यान रखना। और अहम आ जाता है, कई थोड़ी सेवा करते हैं, कोई अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तन से मदद करते हैं, मन से मदद करते हैं, यज्ञ के सहयोगी बन जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फोटो कहीं तो छपना चाहिए। मैं इतना सब करता हूँ, मुझे कभी बड़ों के आगे ले ही नहीं जाते हैं, कभी बाबा से स्टेज पर भी नहीं मिलाया, मैंने इतना देखो यज्ञ में सहयोग दिया, और फिर मैं का अहम जैसा बैठता है, ऐसा बैठता है, जो धीरे धीरे वो अहम की बीमारी इतना कैंसर का रूप ले लेती, कहते कैंसर की बीमारी का लास्ट स्टेज पर पता चलता, पता ही नहीं चलता हुआ क्या। तो ये दोनों बीमारियां बड़ी खतरनाक है, एक अहम की एक बहम की, कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए ध्यान देना कि कभी ऐसा न हो जाए जो ये बीमारी अंतिम श्वास तक पहुंचा दे। बाबा कहता नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल दो, समय पर आपको मिल जाएगा, दरिया भी रिटर्न कर देगा, लेकिन नेकी करते हैं और तुरंत उसकी चाहना रखते हैं। मिलना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए, महिमा होनी चाहिए, कोई तो पूछे भविष्य किसने देखा क्या मिलेगा, इस समय मैंने इतना किया है तो कुछ तो रिटर्न हो। तो इस प्रकार के कोई भी प्रकार से श्रीमत का उल्लंघन, ये सब श्रीमत की लगाम है और कुछ नहीं है, यही लगाम है, लगाम कोई स्थूल थोड़ी है, ये सूक्ष्म लगाम है कि कोई भी प्रकार से इन विकारों के, बड़े विकारों को तो परिवर्तन कर लिया, जीत लिया, धारणाएं अपना ली, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म चेकिंग करके उसको लगाम में टाइट करो, उसको बांधो, तो मन अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाए। और मन कंट्रोल में आ गया, अब उसके लिए कुछ और विधियां बनानी पड़ती हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे अपना मन का टाइम टेबल सेट करो। स्थूल में तन के टाइम टेबल को तो हम बना लेते हैं, भाई आज इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इससे अपॉइंटमेंट है, ये करना ये करना ये करना, लेकिन ध्यान रखना मन को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए समर्थ में बिजी रखने का टाइम टेबल जरूरी है। हर एक को अपने मन का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कम से कम 4 से 8 बजे का जो सवेरे का समय है, ये 4 घंटा मैं अपने मन को एक बाबा की धुन में रखूंगा। चाहे आप शरीर को व्यायाम करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे मुरली सुन रहे हैं, चाहे स्नान पानी करा रहे हैं, 4 घंटे में सब काम होते हैं, लेकिन ये 4 घंटे का टाइम मन को तो दे सकते हो कि मन को मैं बाबा से रूह रियान करने में, सूक्ष्म तन की सैर करने में, कोई अच्छा ज्ञान का चिंतन करने में, मनन करने में, इस समय को मैं सफल करूं। जितनी मेरे टॉपिक्स पर चिंतन मैंने किया है, लिखा है, वो यही टाइम मेरा फिक्स रहा है, 6 से 7 अपना टाइम है। व्यायाम भी करते हैं, मनन चिंतन भी करते हैं, मुरली भी सुन लेते हैं, सब कुछ उसमें 1 घंटे में हो जाता है। 4 से 5 योग कर लो अच्छी तरह से, शक्तिशाली बाबा से रूह रियान करो, बातें करो, बाज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी विधियां सिखाई, रोज सिखाता है भिन्न भिन्न रीति से मुरली के अंदर। सिर्फ एक तरह का अमृत वेला नहीं करना, नहीं तो अमृत वेला भी बोर कर देगा। कई लोग नियम पालन करने के लिए नियमी नाथ बन करके उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन विधि यथार्थ न होने के कारण सुस्ती वार करती है। थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी देर बस अच्छी तरह से बैठे, मैं आत्मा हूं, मैं सांस स्वरूप हूं, मैं बाबा से मिलने के लिए बैठा हूं, बात किया और थोड़ी देर के बाद आलस्य आया, कहते अब क्या, नींद आने लगी, सो जाओ। 1.5 घंटा टाइम पास करना कईयों के लिए पास करना पड़ता, टाइम पास, वो जो मिलन मिलन होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, वरदान मिलने चाहिए, शक्तियां मिलनी चाहिए, या सकाश देने की सेवा करनी चाहिए, बहुत कुछ वैरायटी बाबा ने सिखाया, लेकिन बाबा के बच्चे वो वैरायटी को क्यों यूज नहीं करते पता नहीं। मैं सोचता हूँ 7 दिन में कभी प्रेम स्वरूप स्थिति का अनुभव, आज मुझे प्रेम स्वरूप स्थिति का अनुभव करना, आज मुझे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करना, आज मुझे ज्ञान स्वरूप स्थिति का अनुभव करना। 7 गुण हैं आत्मा के, 7 गुण हैं, उन 7ों गुणों का बाबा सागर है। अगर वैरायटी करो 7 दिन में, 7 चेंज कर लो पोजीशन, तो मैं समझता हूँ मन कभी भी निराश नहीं होगा कि मुझे तो कुछ मजा ही नहीं आता, योग तो लगता ही नहीं। अरे कहाँ नहीं, कैसे नहीं लगता? आप उसको काम ही नहीं दे रहे हो, उसको चिंतन ही नहीं दे रहे हो, कैसे लगेगा? तो एक घंटे को, पौने घंटे को इतना अच्छा सफल करने के लिए वैरायटी रूप से योग को, नवीनता और वैरायटी आपके योग को कभी भी कमजोर करने नहीं देगी, बढ़ता जाएगा, अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। मन को कोई संकल्प दे करके बैठो। अच्छा चलो नींद आ रही, कोई कारण से आप लेट सोए हैं, पहली श्रीमती उल्लंघन ये की होगी, बाबा कहता 10 तो बस, रात को 10 बजे बाद नहीं सो। और कईयों की तो आदत होती है 10 के बाद ही खाना बनता है, पिकनिक होती है, या टीवी देखते या सीरियल देखते या ऐसी कोई बातें, श्रीमत की लगाम वहां टूट रही है। कहते क्या करें, योग में तो बैठ जाते, बाबा तो कहता उठ जाओ, उठ जाते, लेकिन वो श्रीमत की लगाम को छोड़ा है सवेरे, मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए 10 बस, 10 को बस कर दो, 10 बजे बाबा को बोलो बाबा गुड नाइट, अब कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं पढ़ना। कोई बहुत जरूरी एक दो घंटा, कोई मास में, दो मास में, छह मास में ऐसा काम आ गया जो आपको जागना पड़ता है, वो बाबा उसके लिए माफ करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करो, करो। एक बार क्या हुआ आपको, मैं एक प्रैक्टिकल की बात सुनाता हूँ। हमारे पास एक मिलियन मिनट्स प्रोग्राम चल रहा था, याद होगा जो पुराने हैं, और डबल विदेशी उस प्रोग्राम में इतना जुट गए, क्योंकि मिलियन मिनट्स इकट्ठे करने सबके आते थे, फार्म आते थे भर भर करके, तो कंप्यूटर में रात को बैठ करके फिट करते रहते थे, रिपोर्ट बनाते रहते थे। 12-1-2 बज जाता था बैठे बैठे काम करते करते, 5-7 लोग काम उस डिपार्टमेंट में कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड की जितने मिनट्स इकट्ठे होते थे, सबकी फाइलें पढ़ना, सबको सेट करना, कंप्यूटर में डालना। तो बड़ा निराश हो गया कि अमृत वेला नहीं होता। अमृत वेले उठ जाते हैं, नींद आती है, 12 बजे तक, 1 बजे तक काम करते हैं, क्या करूं मैं? 2-3 महीना उन्होंने काम किया, फिर बाबा के पास यहाँ मिलने आए, और बाबा को पता चल गया कि ये बच्चे उदास हो गए हैं, बहुत थक जाते हैं, सेवा तो करनी है, थक जाते हैं, क्या करें? बाबा ने बुलाया उनको सामने, अव्यक्त बाबा ने, और कहा कि आप बच्चे बहुत मेहनत करते हो, बाबा भी देखता है, लेकिन आपका अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब हो। बाबा ने खुद बोला उनको, ऐसा करो कि आप जो 10 बजे के बाद काम करते हो, 4 घंटा भी करते हो या 3 घंटा करते हो, 10 बजे के बाद जो करते हो वो बाबा के ऊपर छोड़ दो, और आप सो जाओ 10 बजे। बाबा को बोलो बाबा आप कर लो, और सवेरे आप 1 घंटा योग करके, अच्छा योग करके, फिर 1 घंटा वही काम 3 घंटे का आप बैठोगे, बाबा आपको करा देगा, काम रुकेगा नहीं, सेवा कोई नहीं रुकेगा, लेकिन आप जो 3-4 घंटा रात को जागते हो, थक जाते हो, फिर अमृत वेला योग खराब होता, मुरली डिस्टर्ब होती, इससे तो अच्छा है श्रीमत का पालन करो, यथार्थ विधि पूर्वक चलो, और 3-4 घंटे काम जब मन एकाग्र होगा, अच्छी तरह से बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, जो आपका 5-4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में हो जाएगा। उन्होंने चेंज किया और उनके अनुभव में आया कि सचमुच वो बाबा ने जो विधि बता दी कि हम 1 घंटे में 4 घंटे का काम कर लेते हैं। तो टाइम टेबल को सेट करने की विधि होनी चाहिए, बस मन को मुझे कैसे एंगेज करना है। आज आप कर्मयोगी हैं, भोजन बनाओ, ऑफिस का काम करो, कोई भी काम करो, आज हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्लास ही नहीं करा रहे हैं, हम कोई भट्टियां ही नहीं करा रहे हैं, 14-12 घंटा ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है, मुरलियां सेट करनी है, सारे पत्रों का जवाब देना है, सारे मनी ऑर्डर्स का जवाब देना है, आप समझते हो सेवाएं क्या मधुबन में कम है क्या? साथी हैं, कर रहे हैं, मदद करते हैं, सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रहता है कि कहीं भी इतने सारे वर्ड को एक साथ, मुरली मिलनी चाहिए, पहले तो ये सिस्टम नहीं थी, मालूम होगा आपको 1 महीने के बाद मुरली मिलती थी सेंटर्स को। अभी आज जो मधुबन सुन रहे हैं वो अर्जेंटीना में बैठा हुआ वो भी सुन रहा है, एक गांव में बैठा हुआ भी वही मुरली सुन रहा है, उसके लिए सेटिंग तो मुझे ही करनी है ना। ऐसे दादी ने मेरे एक दिन बोल दिया था कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक साथ पूरा विश्व पढ़े मुरली। दादी थोड़ी मेहनत लगेगी, कहती मेहनत करके देखो, हो जाए तो बहुत अच्छा है। बड़े प्यार से समझाया था मुझे, तो मैंने कहा दादी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने पहले अलर्ट रहना पड़ता। अगर आज मैं यहाँ मई में कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी मैं 15 दिन 20 दिन अफ्रीका होके आया, कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम बनाता हूँ, तो उसके पहले ध्यान रखता है रहता है कि हमें 3 महीने पहले सब सेटिंग करना है। मुरली में वरदान स्लोगन ये सेटिंग बहुत सारी बातें होती हैं, बिना पढ़े भेज दो, समय अनुसार वो मुरली में कुछ करेक्शन होती है, कुछ चेंज होता है, उसको चेक करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज माना वही रिपीट कर दिया, उसको फुल सेट करना पड़ता है। हर कार्य कर रहे हैं लेकिन टेंशन तो नहीं है, कोई प्रकार का ऐसा तो नहीं मैं बहुत बिजी हूं मेरे पास टाइम नहीं है। मन को शांत रख करके, बाबा के साथ रख करके, बहुत धैर्यता के साथ, बहुत निर्माणता के साथ, बाबा कराने वाला है, अपने आप कराएगा। हम हाँ जी तो करें, हम अहम और बहम क्यों दिखाएं, कैसे होगा, मैं बहुत बिजी हूं। मैं कहता हूं मैं बहुत बिजी नहीं, बहुत इजी हूं। बाबा ने बहुत इजी बनाया, इजी रहो, देखो सब काम अपने आप बाबा कराएगा। ये नहीं दिखाओ मेरे पास बहुत काम है। बहुत लाइट होकर के बाबा को साथी बना करके, धैर्यता से, गंभीरता से, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो। जितनी आपको सेवाएं मिली हैं बहुत दिल से प्यार से सब प्रकार के कर्म करो, लेकिन बाबा को साथी बना करके समर्पित करके, बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूं, कोई वर्क पेंडिंग रहेगा ही नहीं, अपने आप बाबा करा लेगा। आज मैं मई में हूं तो मेरी सितंबर की मूलियां मेरे हाथ में चल रही हैं, तब मैं भाई बाहर कहीं जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं सोचूं हो जाएगा कर लेंगे, टाइम पड़ा है, तो जब टाइम आएगा तो मन तो वहीं लगेगा ना, ये पड़ा है, ये रुक गया, इसने छापा नहीं, इसने पोस्ट नहीं किया, इसने ये नहीं किया, कितने प्रश्न उठ जाएंगे। अब मन को सेट करने के लिए टाइम टेबल अपने को खुद बनाना पड़ेगा ना, इसमें बाबा बना के आपको नहीं देगा, दादियां बना के नहीं देंगी। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, अगर बड़े बना के दे देंगे तो कहेंगे ये तो बड़े लोग तो फ्री रहते हैं ना, ये हमारा टाइम टेबल क्या जाने। और टाइम टेबल के अनुसार आप बनाए हुए टाइम टेबल के अनुसार अपने को एडजस्ट नहीं कर सकते। हरेक अपना टाइम टेबल खुद बनाओ कि अमृत वेले मुझे ये करना है, मुरली के समय ये सामान लेकर के बैठना है, कर्म के समय ये सामान लेना है। आज कितने सामान मुरलियों में मिले हुए हैं। योग का आधार है स्वयं स्वयं को मान देना, सामान में रहना। कोई एक टाइटल लेकर के, कोई एक सामान लेकर के कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, बाबा साथी है, बाबा करा रहा है, करण करावनहार वो है, ये आत्मा तो निमित्त है। आत्मा करावनहार इन कर्मिंद्रियों से करा रही है। आप अगर अभ्यास करके देखो मन अपने आप कंट्रोल हो जाए। मन आपका इतना अच्छा साधन है, इसको सिर्फ गलत भोजन नहीं दो। गलत भोजन देने से मन चंचल है। संग का भोजन गलत है, अच्छे लोगों का संग नहीं है, इधर की बातें कर रहे हैं, उधर की बातें कर रहे हैं, नहीं करना ऐसे संग, किनारा करो उनसे, बचाओ अपने आप को। भोजन जो खा रहे हैं उसको भी बहुत योग युक्त, किसी किसी को खाना पड़ता है किसी परिस्थिति के कारण, बाबा कहता खाओ लेकिन सात्विक हो और भोग लगा के खाओ। अगर प्रवृत्ति के दोनों चलते हैं, मुझे पता है आप सब शक्तिनगर के युगल युगल आए हैं, अधिक प्रवृत्ति वाले हैं भाई बहने, अगर पूरी प्रवृत्ति के सब लोग ज्ञान में चले और पति पत्नी चल रहे हैं तो वो घर तो एकदम आश्रम होना चाहिए। बहुत प्यार से बाबा को भोग लगा के खाओ और खिलाओ, मन आपका अपने आप शुद्ध हो जाएगा, कहना मानने लगेगा। मन को अन्न का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई कारण से कोई का घर में नहीं चल रहा है और खाना पड़ रहा है तो उसकी एक अलग बात है और उसके लिए अलग विधि अपनानी चाहिए, उसके लिए अलग श्रीमत है। लेकिन अगर घर पूरा परिवार ज्ञान में है और सभी अच्छे योगी बच्चे हैं तो बाबा को प्यार से भोग लगाओ, अलग बर्तन रखो, विधि पूर्वक भोग लगा के खाओ और खिलाओ। संग की परहेज, अन्न की परहेज और जो कुछ देख रहे हो, ये मन इन्हीं 3 चीजों से प्रभावित होता है। आजकल जो देख रहे हैं ना, टीवी घरों में जो आ गई, या जो अध्ययन कर रहे हैं, कोई को अगर नावल पढ़ने की, गंदी पुस्तकें पढ़ने की आदत बन गई, या आज मोबाइल के अंदर कोई गंदी चीज देखने की आदत बन गई, या इसी प्रकार की जो इंटरनेट की माया, उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया, ये सब श्रीमत की मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहे हैं, फिर मन कैसे कंट्रोल में आए। जहां जहां श्रीमत की रेखाएं ध्यान पर आती हैं, ये हमारे मन को अशुद्धता की ओर ले जा रही हैं, ये मेरे मन को विचलित कर रही हैं, मेरे सपनों को खराब कर रही हैं, मेरे संकल्पों को खराब कर रही हैं। बाबा कहता है वो लगाम टाइट करो, वहां पर लगाम पकड़ो। ऐसे नहीं लगाम सदा मन को देनी है, लेकिन ऐसे समय पर लगाम लगाओ कि ये मुझे नहीं करना है, ये बाबा की श्रीमत के विरुद्ध में जा रहा हूं, ये मुझे नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है, नहीं खाना है, और ऐसे संग में नहीं जाना है। मन आपका अच्छा हो जाए, एक्सरसाइज कराओ। मान लो बहुत कमजोर है मन, क्योंकि बहुत सारे संस्कार इसके अंदर आ गए हैं, तो बाबा कहता है अगर शरीर कमजोर होता तो भी डॉक्टर कहते एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज तो शरीर को स्वस्थ बना देती है, आप मन की एक्सरसाइज जब समय मिले 500 रूपों की ड्रिल कर लो। अगर 500 रूपों में नहीं जाते हो तो 3 स्वरूप तो बड़े अच्छे हैं, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। कईयों को अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति और पास्ट में देवता बनने की स्मृति, ये साकारी याद के अंदर 3 स्वरूप हैं। पास्ट में देखो तो पूज्य स्वरूप है, कितने भक्तों की मनोकामनाएं मेरी मूर्तियां पूरी कर रही है, तो मेरा ही स्वरूप। और आने वाला भविष्य का स्वरूप, मैं देव बनने वाला, देवता बनने वाला, वो दिव्य गुण, वो रायल संस्कार आते जाए मेरे अंदर, ये साकारी स्वरूप की याद आ जाएगी। फिर आकारी स्वरूप में बिल्कुल डबल लाइट है, बाबा के साथ है, वतन में है, जैसे शरीर का भान से न्यारे हैं, ऊपर कहीं नहीं जाते हैं, शरीर के अंदर ही, लेकिन कोई बोझ नहीं है, कोई चिंतन का बोझ नहीं है, कोई कर्म का बोझ नहीं है। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं, करावनहार है, फरिश्ता बन जाओ, डबल लाइट, आकारी स्वरूप का अनुभव। कभी एकदम बीज बन करके निराकार स्वरूप में बाबा के साथ बैठे, एक संकल्प में स्थित है, केवल अनुभव का संकल्प और कोई अनुभव नहीं, संकल्प नहीं है, निराकार स्थिति का अनुभव करो। मन को एक्सरसाइज कराएंगे ना तो मन शक्तिशाली बन जाएगा, क्यों क्या कैसे में नहीं जाएगा, सब हो रहा है, हम भी देख रहे हैं यज्ञ के अंदर भी, बहुत विस्तार है, विस्तार में कुछ न कुछ तो होगा ही, अगर हम देखने लगे ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता कभी योग नहीं लगेगा। बाबा कहता बच्चे अगर रेस के घोड़े को दौड़ाना होता था ना पहले जमाने में, रेस देखी थी घोड़े की, घोड़े की रेस वाले भी घोड़े को 2 पट्टी ऐसे बांध देते हैं, ऐसे नहीं दौड़ता है, पहले पट्टी लगाते हैं ऐसे। क्यों पट्टी लगाते हैं? अगर साइड सीन में कहीं घास या कोई चीज देख ली तो बिछुल जाएगा, आपको तंग कर देगा। अरे आप भी रेस के घोड़े हो, पहुंचना है मंजिल पर, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को छोड़ करके आप इधर देख रहे हो, ये क्या करता वो क्या करता, ये क्या खाता वो क्या खाता, क्यों देखना साइड सीन को? और साइड सीन तो मनोरंजन के लिए होते, अगर दिखाई भी दे रही है तो और मनोरंजन होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका अपना पार्ट हमारा अपना पार्ट। तो बाबा कहता है साइड सीन को देखो नहीं, अगर दिखाई देती है तो उसे मनोरंजन का अनुभव करो और मंजिल सामने रखो, बस पहुंचना है मुझे, मुझे बनना है ना, कोई बने या ना बने, कभी नहीं सोचो 108 तो ये बन गए होंगे, इतने पुराने पुराने सब बैठे हैं। बाबा कहता रेस चल रही है, रेस के अंदर कोई भी नंबर ले सकता है, अभी कोई सीट फिक्स नहीं है, 2 के सिवाय और कोई की फिक्स बताई नहीं बाबा ने, तो हम सब रेस करें और साइड सीन को भूल करके अपने मन को बाबा की तरफ, बस मंजिल मुझे पहुंचना है, मुझे बनना है। आप देखो फटाफट बाबा आपको ले जाएगा, अनुभव होगा कि मैं बहुत तीव्र पुरुषार्थी बन गया हूं, मुझे इधर उधर नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं सोचना। तो अगर ऐसे मन को काम देंगे अच्छे अच्छे संकल्प, अगर बहुत फ्री रहो ना, फ्री नहीं रखना, ध्यान रखना, बिजी रखो, लिखो पढ़ो, बहुत अच्छा अच्छा साहित्य मिला है, जगदीश भाई की इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, मैं तो जब समय मिलता है खोल के बैठ जाता हूँ, पढ़ डालता हूँ। ज्ञानामृत इतनी अच्छी निकलती है, अनुभव पढ़ो, आजकल ज्ञानामृत में कितने बढ़िया अनुभव आते हैं, पढ़ करके खुशी होती है, अरे बाबा के बच्चे जेल में बैठे हैं, फलानी जगह बैठे हैं, क्या अनुभव अच्छे अच्छे कर रहे हैं। मैं एक जेल में गया थोड़े दिन पहले, टाइम हो गया 5 मिनट में सुना दूं, बहुत अच्छी बड़ी जेल थी बनारस की, नाम शायद बताता हूं। तो मुझे कहने लगे यहां पर जो क्लास चलता ना उम्र कैद वाले भाई हैं, और इतने बाबा के पक्के बच्चे जिनको बैज हमने दिया, हमने बैज क्यों दे दिया, जेल वालों को बैज दिया है, तो कहते आप देखो तो चल के उनके अनुभव सुनो, तो मेरे को उस जेल में लेके गए दिखाने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बाबा का कमरा बनाया, खुद ही में बनाया है, एक कमरा बनाया जेल के अंदर, और एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया है, और 25-30 कैदी बहुत अच्छे रेगुलर बैज लगा हुआ, सफेद ड्रेस पहनी हुई, कैदियों वाली ड्रेस नहीं। मैंने कहा ये तो ब्रह्मा कुमार बैठे हैं सारे, तुम जेल में क्यों भाई? कहते हमको उम्र कैद मिली, हम क्या करें, छूट जाएंगे, बहुत सारे छूटे हैं। इतना अच्छा चरित्र, इतना अच्छा व्यवहार, सबके साथ मिलनसार, सब खुश हैं, पूरा जेल खुश है, अपने हाथ से बनाते खाते वहां जेल के अंदर। कहते हम लोग अपने आप बनाते हैं अलग से, नहीं तुम तो आश्रम बना दिया जेल को। सब जितने लोग जाते हैं, जितने अधिकारी आते हैं, वो देखने जाते हैं। इतनी खुशी से गीत गाए, इतना अच्छा डांस किया। मैं गया रे मधुबन से, मुरली वाला भाई आया है, हमको तो पता ही नहीं था भाई ये सब हमको इतना स्वागत करेंगे बैठ करके, मालाएं ले या फूल लेके आ गए, ऐसे लगे कोई आश्रम में हम आ गए हैं। इतनी खुशी हुई, कितने जेल में बैठे कैसे कैदी हैं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, हमको भगवान जेल में मिला, शायद श्री कृष्ण का जेल में इसीलिए जन्म दिखाया था। तो देखो कैसे बाबा कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है। तो ऐसे पुरुषार्थियों की किताबें, उनके अनुभव सुनो, पढ़ो। ये जो निराशा है, दिल सिकस्ती है, मन भटकता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, सब कंप्लेन खत्म हो जाएंगे, इसको बिजी करो। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अच्छे संग में रह के, अच्छा चिंतन करके, अच्छा होमवर्क दे करके, श्रीमत की बाउंड्री को लांघना नहीं, बस जो मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं उसके लिए मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। देखो मन कैसे कंट्रोल में आ जाता। ओम शांति।
थैंक यू राजू भाई। समय के अनुसार जहां जहां आजकल लूज होते हैं, समय पर अगर वहीं से फिर से सब ठीक हो जाए और टाइट हो जाए तो मशीन फिर से वही तीव्र गति से चलने लगता है। तो आज जहां जहां समय अनुसार, समय बहुत बदला हुआ है, और जहां जहां श्रीमत को हम थोड़ा सा अपने नजरिए से देख लेते हैं, वो सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया है। आपका सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू। हम बाबा की याद में बैठते हैं।
एक सेकंड में बाबा के पास वतन में पहुंचा।
ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस